दिन भर 19 अगस्त दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल, राहत बचाव कार्य जारी।
इस एक्सीडेंट की वजह से इसके 5 डिब्बे ट्रेन के उतर गए हैं, ये बताया जाता है, और ये घटना लगभग शाम को 5:50 के आसपास हुई।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मजबूत सरहदें, मगर एक चीज है जो दोनों मुल्कों की नौजवान पीढ़ी को जोड़ती है, शायरी और कविता।
आज भी गुलजार की नज़में श्री जावेद अख्तर के सुरीले गीत अपने पन से मिलते हैं, उस तरफ भी बाबा बुल्ले शाह के हैं इश्क में दीवाने सब, क्या ही अच्छा हो अगर साहिबे मसनद बजाए।
लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। ये हादसा शाम 5:50 पर हुआ। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनिल सक्सेना ने बीबीसी को बताया कि ट्रेन के 5 कोच पटरी से उतरे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। रूस के सुरगुत शहर में कम से कम 7 लोग चाकू से किए गए हमले में जख्मी हो गए हैं। शुरुआती खबर के मुताबिक हमलावर की भी पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। जांचकर्ताओं का कहना है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने हमलावर की पहचान कर ली है। 1994 में जन्मे इस शख्स और इसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी बयान से पता चलता है कि हमलावर एक से ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। कैटालोनिया में हुए 2 हमलों में 14 लोगों की मौत के बाद स्पेन की सरकार का कहना है कि पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ भरे इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी, मगर आंतरिक मामलों के मंत्री जुआन इग्नेकियो ज़ोइडो ने कहा कि देश में आतंकवाद के खतरे के आकलन को कम नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका मतलब होगा कि एक और हमला हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों से बातचीत के बाद ज़ोइडो ने कहा कि इन हमलों को अंजाम देने वाले जिहादी गुट को तोड़ दिया गया है।
We have also re-evaluated the level of
आतंकवादी हमले को देखते हुए चेतावनी के स्तर का दोबारा आकलन किया है। विशेषज्ञों ने बहुमत से फैसला लिया कि आतंकवाद के अधिकतम खतरे को बरकरार रखा जाए। हमने उनकी सलाह मान ली है। खतरे का स्तर वही रहेगा जो पहले था, मगर हम अतिरिक्त इंतजाम करेंगे। ये थे स्पेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के शब्द। पूरा जीवन कुष्ठ रोग के खिलाफ अभियान चलाने वाली जर्मन मूल की नन रूथ फॉ को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। रूथ को पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहा जाता था। रूथ 50 साल से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान में रहीं। उन्होंने 1960 में कराची की झुग्गियों में एक मेडिकल मिशनरी के तौर पर शुरुआत की थी। उनके ताबूत को पाकिस्तान के झंडे और गुलाब की पंखुड़ियों से ढका गया था। डॉक्टर फॉ लेप्रेसी सेंटर में कर्मचारी यास्मिन मॉरिस ने कहा कि रूथ ने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया।
इस हॉस्पिटल का इंसानियत का बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि आज के दौर में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो देखो हर कोई अपने लिए सोचता, लेकिन उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल सादा जिंदगी उन्होंने गुजारी है, इंसानियत के साथ बहुत मोहब्बत की।
ये थे कराची के डॉक्टर फॉर लेप्रेसी सेंटर की कर्मचारी यास्मिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनान की सेना ने कहा है कि उसने सीरिया के साथ लगती सीमा पर इस्लामिक स्टेट के आखिरी बचे लड़ाकों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। ये पहाड़ी इलाका पिछले 3 साल से इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। सेना का कहना है कि यहां पर आईएस के करीब 600 लड़ाके हैं और वे विमान और कवच भेदी मिसाइलों से लैस हैं। उनके पास ड्रोन और स्नाइपर होने की बात भी कही जा रही है। लगभग इसी वक्त सीरियाई सेना और लेबनान के शिया संगठन हिजबुल्ला ने भी आईएस के खिलाफ अभियान छेड़ा है। लेबनान का कहना है कि इन दोनों कार्रवाइयों के बीच कोई तालमेल नहीं है। फिनलैंड के दक्षिण पूर्वी शहर तुर्कू में शुक्रवार को लोगों को चाकू से गोदे जाने की घटना को पुलिस ने आतंकवादी हमला बताया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 8 अन्य जख्मी हुए थे। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 18 साल के मोरक्कन युवक के तौर पर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अचानक लोगों को अपना निशाना बनाया। शहर के मुख्य चौक पर उसने 2 लोगों पर चाकू से वार किया और फिर पास की गलियों में लोगों पर हमला किया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन यानी कि शनिवार का दिन बीबीसी इंडिया बोल का दिन होता है, लेकिन बंटवारे के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली और कराची के नौजवान शायरों को आज हम एक ही मंच पर सुनवाने वाले हैं। लेकिन एक दुखद खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। यहाँ खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। ये हादसा 6:45 के आसपास हुआ। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने अब से 5 मिनट पहले रेलवे के जनसंपर्क विभाग में एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनिल सक्सेना से बात की।
ये हादसा जो है उत्तर प्रदेश के खतौली स्टेशन के पास हुआ है और ये हमारे मेरठ सहारनपुर वेस्टर्न यूपी का जो जगह है सेक्शन, उसमें बीच में ये स्टेशन पड़ता है। ट्रेन जो है 18477 पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस है और ये रेलवे के हिसाब से कहें तो ये नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में पड़ती है दुर्घटना स्थल। और इस एक्सीडेंट की वजह से इसके 5 डिब्बे ट्रेन के उतर गए हैं ये बताया जाता है। और ये घटना लगभग शाम को 5:50 के आसपास हुई।
कुछ लोगों के जख्मी होने की या किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर है आपके पास?
अभी देखिए थोड़ा सा अभी हमारा ध्यान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को मोबिलाइज करने पे है। हमारे दिल्ली डिवीजन के सीनियर ऑफिसर रश कर रहे हैं।
जी, ये थे जनसंपर्क विभाग के अधिकारी अनिल सक्सेना। सीधे कार्यक्रम में हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर स्थानीय पत्रकार अमित सैनी घटनास्थल पर मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये हादसा कितना बड़ा है और आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं?
देखिए, अगर मैं हादसे की बात करूँ तो शायद 2017 का रेल हादसा ये सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं मौके पर मौजूद हूँ और मैं देख पा रहा हूँ करीब 12 से 14 बोगियां पटरी है और 1, 2, 3, 4 बोगियां तो ऐसी हैं जो ऊपर नीचे चढ़ी हुई हैं। बिल्कुल ये कहा जाना मुश्किल है कि इसमें जितने भी यात्री सवार होंगे कि उनको क्रोच ना आई हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सामने बोगी में जो देख पा रहा हूँ, बोगी के नीचे भी अभी 2-3 लोग दबे हुए हैं। राहत कार्य जारी है और लगभग लाखों लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है।
ये जो लोग वहाँ पर मौजूद है, जो लोग वहाँ पर मौजूद है, वो वहाँ के लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं जो कि मदद करने के लिए पहुँच गए हैं?
जी जी जी, ये एक्चुअली जो जहाँ पे घटना स्थल है, घटना स्थल के दोनों तरफ आबादी है। यहीं पे मेन जो तिलक राम इंटर कॉलेज है, जो लगभग ये समझिए कि स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद ये हादसा हुआ है।
अच्छा, ये बताएं कि वहां पर जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य जारी है, तो कैसे राहत बचाव कार्य जारी है, कैसे मदद पहुंचाई जा रही है?
मदद अगर मदद की हम बात करें तो मदद के नाम पर केवल झुंझुना यहां पे है। प्रशासन की तरफ से पुलिस भी है, रेलवे की तरफ से रेलवे अधिकारी और कर्मचारी भी लगे हुए हैं, लेकिन जहां अगर लोकेशन की बात करें ना, यहां पे बड़ी मुश्किल है कि ट्रेन या और कोई संसाधन ऐसे आए जा सके। अभी देखिए मेरे सामने से जा रहे हैं करीब, ये सिलेंडर लेके जा रहे हैं, गैस सिलेंडर जिनसे कटिंग की जाएगी। और अब आपको बता दूं कि लगभग इस हादसे को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब सिलेंडर आए हुए हैं, अब आए हैं सिलेंडर। और अगर मैं राजनीतिक की बात करूं तो बीजेपी के तमाम नेता भी यहां पर मौजूद हैं, आ चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान यहां पे आ चुके हैं। उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सैनी। अमित सैनी इस समय मुजफ्फरनगर के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मजबूत सरहदें, मगर सरहदों के बावजूद एक चीज है जो दोनों मुल्कों की नौजवान पीढ़ी को जोड़ती है, शायरी और कविता। सुनिए 16 अगस्त को संपन्न हुए इस कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश।
इस घट अंतर सात समंदर इसी में नालखता इस घट अंतर पारस मोती खनहारा इस घट अंतर अनहद गरजे इसी में फूटा
दुनिया के किसी भी कोने में आप हों हम आपका खैर मकदम करते हैं स्वागत करते हैं बीबीसी हिंदी सर्विस और बीबीसी उर्दू सर्विस हरप्रीत ने कबीर अभी सुनाया हिंदुस्तान के शायर नौजवान कवि और म्यूजिशियन यहाँ पर हैं दिल्ली के इस कैफे में और हम आपको ले चलेंगे कराची बीबीसी उर्दू सर्विस के हमारे साथी मुलाकात आपकी करवाएंगे पाकिस्तान के नौजवान शायरों से सीधे चलते हैं वसत उल्लाह खान के पास वसत साहब खैर मकदम आपका भी और आपके तमाम साथियों का भी आप वहां से जो नशिस्त कर रहे हैं जो बैठक कर रहे हैं उसका तुम्हें अंदाजा दीजिए और जैसे हरप्रीत ने सुनाया कुछ हम आपकी भी सुने
बिल्कुल शुक्रिया राजेश जोशी कराची से सलाम पाकिस्तान सलाम हिंदुस्तान सलाम इंटरनेट सलाम फेसबुक और सलाम स्काइप जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ हमारी पहली नस्ल जिसने तकसीम भोगी वो ये कहते कहते ख़त्म हो गई ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर के इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं मंटो उस नस्ल का नुमाइंदा था फिर उसके फौरन बाद दूसरी नस्ल आई जिसने ढलती उम्र में शिकवा किया तुम तो हम जैसे ही निकले अब तक कहाँ छुपे थे भाई फिर तीसरी नस्ल आई ग़ुलाम अली को सुनती हुई नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनती हुई और फिर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को जंग की तरह देखने और अफसरदा होने और खुश होने वाली नस्ल और अब है चौथी नस्ल जो यहाँ मौजूद है लैपटॉप व्हाट्सएप और फेसबुक से मुसल्ला नस्ल जिसने तकसीम को सिर्फ कहानी के तौर पे सुना है या मीडिया के ज़रिए दुश्मनी का कर्जा लिया है मगर इस नस्ल का शाबाश है कि भारत और पाकिस्तान की दरसी किताबों में भरा हुआ जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया ये बंद आंखें करके मानने वाली नस्ल नहीं है ये सवाल उठाने वाली नस्ल है ये गोरमहर कोर की तरह ये ज़ेबुन्निसा की तरह जंग को चैलेंज करने वाली नस्ल है आज का पाक भारत इज्तमा इसी नस्ल के तजर्बात और तख्लीकात शेयर करने के लिए है मगर इस इज्तमा में हर तरह के लोग हैं मुझ जैसे बूढ़े भी और राजेश जोशी जैसे जवान भी और मेरे साथ मेरे बराबर में दो नौजवान चौथी नस्ल के नौजवान कुमैल और अम्मार अनम वो रखते हैं आपकी जानिब से मौसीकी का नजराना हमें मौसूल हुआ हम भी आपको प्रोग्राम के आगाज़ में मौसीकी का नजराना भेज रहे हैं शाहबाज करे परवास ते जाने राज दिला दे
शाहबाज करे परवास ते जाने राज दिला दे लाल कलंदर शाहबाज करे परवास ते जाने राज दिला दे सरदार कलंदर मस्त अली लाल कलंदर मस्त सखी लाल कलंदर मस्त शाहबाज कलंदर मस्त
जी जोशी जी, आपके हवाले
माटी, वही माटी आपके पास भी है, वही माटी हमारे पास भी है। पिछले महीने, डेढ़ महीने, दो महीने पहले मैं इस्लामाबाद गया था तो हमारी एक यहाँ जान पहचान की, उन्होंने कहा रावलपिंडी से किसी खेत से मिट्टी का ढेला ले आना, मैं अपने घर में एक पेड़ लगाऊंगी और उसमें वो मिट्टी डालूंगी जहां पे वो पेड़ लगाऊंगी। मैं लेके आया और जब मैंने उनको वो मिट्टी का ढेला रावलपिंडी के किसी गांव का दिया तो उनकी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। माटी एक ऐसी चीज है जो हम सब में बसी, हम सब मिट्टी के बने हैं, ये हिंदुस्तानी जो पुरानी तहजीब है वो भी कहती है। और ये मेरा भाई जो गिटार लेके आपके साथ देख रहा है, ये माटी के बारे में गाता है, बाबा बुल्ले शाह का कलाम।
वाह वाह माटी ही दे गुलजार, माटी कोड़ा माटी जोड़ा, माटी दा असवार।
बाबा बुल्ले शाह का कलाम। जब बुल्ले शाह वो बुजुर्ग पैदा हुए होंगे, जब वो ये लिख रहे होंगे, तब इस पार उस पार, इस पास से उस पास से का कोई झगड़ा नहीं था। और इसी के साथ ये जो मोहतरमा यहाँ बैठी हुई हैं, शिवानी गुप्ता बॉम्बे में रहती हैं, मुंबई में रहती हैं, दो साल पहले इन्होंने एक पाकिस्तान की लड़की को एड्रेस करते हुए अंग्रेजी में कविता लिखी थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, डियर गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, उस पर आएंगे बाद में। लेकिन इससे पहले आपने और आपने साथ मिलके एक कविता रची है जिसको हम पहले सुनते हैं और उसके बाद वसत साहब आपके पास आएंगे।
इस कविता का नाम है पड़ोसी और हम दोनों ने साथ लिखी है। चेहरे से गुलाल का रंग अब कब का उतर चुका है, मगर यादों से कैसे उतारूं। आम खाकर पेट कब का डगा ले चुका है, मगर लबों पर अभी वही मिठास बाकी है। टैजो का जो बंडल है वो अलमारी का किरायेदार नहीं रहा। सुना है उसने बचपन के मोहल्ले में अपना एक छोटा सा मकान ले लिया है। वो पटर पटर जुबान जो ढंग से क्रिकेट बोलना भी नहीं जानती थी, आजकल बड़ी खामोश सी रहने लगी है।
जिसके पाले में बचपन में अपनी सल्तनत चलाया करते थे, उसकी दीवारें अब काफ़ी ऊंची हो चुकी है। खुद की अकड़ उसे फानने की इजाज़त नहीं देती।
खुद की चार दीवारों के बाहर सब कुछ सरहद सा लगता है।
जहन वीजा की अर्जी मंजूर नहीं करता, आंखें पड़ोसी सुनकर मुंह फेर लेती है,
मगर ये दिल आस नहीं छोड़ता। वो बार बार उस पाले में रहने वाले को ललकारता है, शायद उसी के अंदर उसी के जैसा कोई रहता है। वो मेरे जमीर को अनेक चिट्ठियां लिखता है, उसमें वो कहता है,
हर रोज ना सही तो संडे जब दफ्तर ना हो तभी सलाम दुआ कर लो, खुशी की मजलिस हो तो उसे भी शरीक कर लो। माना वो
पहले वाली बात रही नहीं,
मगर किसी बहाने से उसके रोजगार की खबर रख लो। दुनिया से मेहर वफा से मिलते हो,
मेरे पड़ोसी कभी अपने इस पड़ोसी से भी मिल लो।
मेरे पड़ोसी कभी अपने इस पड़ोसी से भी मिल लो। उसद साहब, वतन आपके हवाले।
आप इनके मुख्तसर जुस्से से धोखा नहीं खाइएगा, ये स्कूल टीचर हैं। इन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, 18 बरस से शायरी कर रही हैं और सोशल मीडिया के ताल्लुक से भारत और भारतीयों से भी वाकिफ हैं और उनसे गुफ्तगू होती रहती है। किस तरह की गुफ्तगू होती रहती है?
गुफ्तगू ऐसी होती रहती है कि वो अपनी स्क्रिप्ट में लिखते हैं और मैं अपनी स्क्रिप्ट में लिखती हूँ, और फिर अंग्रेज़ी में मैसेज होता है कि यार इसका तर्जुमा करके भेज दो, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा रही।
और जब पढ़ी जाती है तो क्या उनका रिएक्शन होता है?
जब पढ़ी जाती है तो वो बोलते हैं कि यार वीज़ा लग जाएगा।
अच्छा,
मिलने आ जाओ।
अरे वाह, अरे वाह। और
बस मुझे प्लेटफॉर्म्स मिली हैं शायरी सोशल मीडिया पर करने की, ज़्यादातर वो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं।
अच्छा,
बेंगलोर में जैसे। और मेरी दोस्त है जो उधर गई भी थी एक इवेंट के लिए, उसके बाद हालात थोड़े ख़राब हो गए, अब वो मुमकिन नहीं रहा वो करना, लेकिन उम्मीद है कि शायद।
तो आप कभी इंडिया नहीं गए?
नहीं।
अच्छा, ठीक है।
लेकिन ये जो मैंने
दोस्त जो हैं जो इंडिया में, वो कभी
ये जो शॉल पहनी हुई है ये मुझे मेरी दोस्त ने दिल्ली से लाके दी थी।
अरे वाह,
इसलिए मैंने आज पहनी।
हाँ, क्या कहने। तो युसरा क्या सुना रही हैं आप?
मैं एक नज़म सुना रही हूँ जो कि अंग्रेजी में मैंने लिखी थी।
ठीक है।
एक
तो कॉन्टेस्ट के लिए ऐसा रखिएगा कि माइक्रोफोन की जरूरत ना पड़े।
मैं उस तारीख की शागिर्द हूँ जिसमें मैं बसती ही नहीं, वो तारीख जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से अमर कर हथियार संभाले एक तलातम की तरह लीग ऑफ नेशंस में उलटती है, वो सबक जिसमें हमें जर्मनी के सीने में वो जंग का अंगार दिखता सलकता नज़र आता है, वो सबक जिसमें एक तकरीर की बेरारवी से अंग्रेज़ की जड़ें सुकड़ती हैं और जुल्म की बाजी सर करते अमेरिका भी आधमकता है, 60 लाख लाशों की राख का सबक याद है, कड़कती ठंड में रूस पर हमले का सबक याद है, यहूदियों के कत्लेआम का सबक याद है। इन असबाक में कुछ यादें अगर खामोश हैं तो वो यादें हिंदुस्तान की हैं, खून से रंगे खिड़कियों की का सबक, लाशों से भरे कुओं का सबक, वो इज्जत के कमज़ोर मुहाफ़ज़ों का सबक, मैं नहीं दोहरा सकती। उस नफ़रत का सबक कौन सा कलम कौन सी किताब में लिखे जिसने 10 लाख अफराद को नंगी तलवार और नंगे नाखनों से मार डाला, वो सबक अब याद नहीं जो अपनी तारीख का है, जो एहसास से इतना करीब है लेकिन लिखाई से कितना दूर।
वाह, क्या कहने
जी उस्ताद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और युसरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कलाम सुनाया वो हमें कहीं गहराई तक छू गया है। यहाँ जितने लोग हैं, जितने सामईन यहाँ पर हैं, उनके चेहरे से मैं बता सकता हूँ कि उनको ये कलाम बहुत पसंद आया है। अब जब आपने वापस माइक मुझे दिया है तो थोड़ी वक्त की इजाज़त भी दीजिए, तो इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए मैं वापस अपने दोस्त गिटारिस्ट हरप्रीत के पास जाता हूँ। हरप्रीत, अब आप क्या सुनाना चाहते हैं?
सपने जीते हैं मरते हैं, सपनों का अंत नहीं होता, सपने जीते हैं मरते हैं, सपनों का अंत नहीं होता, बाहों में कंचन तन घेरे, आंखों आंखों मन को हेरे, या फिर सितार के तारों पर बेचैन उंगलियों को फेरे, बिन आंसू से आंचल भीगे, बिन आंसू से आंचल भीगे, कोई रसवंत नहीं होता, कोई रसवंत नहीं होता। सपने जीते हैं मरते हैं, सोने से हिलते दांत मढ़े, या काम सूत्र के मंत्र पढ़े, चाहे हिजाब के बलबूते, काले केशों के भरम गढ़े, जो रोके वह की गतिविधियां, जो रोके वह की गतिविधियां, ऐसा बलवंत नहीं होता, ऐसा बलवंत नहीं होता।
बहुत खूब। मैंने वसत साहब और बाकी सब लोग, मोहम्मद सदरीवाला से भी पूछा और बाकी यहाँ जो शायर हैं कवि हैं उनसे भी पूछा, पाकिस्तान गए हो कभी? किसी एक ने भी नहीं कहा हाँ, वीजा ही नहीं मिला। तो मुझे बड़ा फख्र हुआ कि मैं 2 बार होके आया हूँ, और 2 बार, एक बार 1 महीने के लिए और 1 बार 8 दिन के लिए, जो बेपनाह मोहब्बत वहाँ मुझे मिली वो मैं आप सब लोगों के सामने जाहिर कर ही रहा हूँ। वो जो शायर जयपुर से आए हुए हैं, जो उधर की तरफ बैठे हुए हैं, मैं एक बार उनके पास जाऊंगा और उसके बाद हम कुछ म्यूज़िक सुनेंगे, और हम 2 घंटे से तकरीबन ये फेसबुक लाइव आप हमारे साथ हैं, कराची हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि अब ये हमको वाइंड अप करना है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो आना है। मैं आपके बगल में बैठ जाता हूँ।
गज़ल का एक मतलब, गज़ल की कुछ शेर देख लीजिए, कि एक एक लम्हे को पलकों पर सजाता हुआ घर, एक एक लम्हे को पलकों पर सजाता हुआ घर, रास आता है किसे हिजर मनाता हुआ घर, एक एक लम्हे को पलकों पर सजाता हुआ घर, रास आता है किसे हिजर मनाता हुआ घर, ख्वाब के खदशे से अब नींद उड़ी जाती है,
ख्वाब के खदशे से
अब नींद उड़ी जाती है, मैंने देखा है उसे छोड़ के जाता हुआ घर,
क्या बात,
ख्वाब के खदशे से, ख्वाब के खदशे से अब नींद उड़ी जाती है, मैंने देखा है उसे छोड़ के जाता हुआ घर, उसका अब जिक्र न कर छोड़ के जाने वाले,
उसका अब जिक्र न कर
छोड़ के जाने वाले, तूने देखा ही कहाँ अश्क बहाता हुआ घर, उसका अब जिक्र न कर छोड़ के जाने वाले, तूने देखा ही कहाँ अश्क बहाता हुआ घर, गर जबां होती तो पत्थर ही बताता सबको, गर जबां होती तो पत्थर ही बताता सबको, किस कदर टूटा है वो खुद को बनाता हुआ घर, गर जबां होती तो पत्थर ही बताता सबको, किस कदर टूटा है वो खुद को बनाता हुआ घर, अब उसे याद कहूँ यास कहूँ या वहशत, अब उसे याद कहूँ यास कहूँ या वहशत, मुझको आता है नजर खाक उड़ाता हुआ घर, अब उसे याद कहूँ यास कहूँ या वहशत, मुझको आता है नजर खाक उड़ाता हुआ घर। और गजल का मकता भी देख लीजिए कि थक गया क्या मेरे तूलानी सफर से आदिल,
थक गया
क्या मेरे तूलानी सफर से आदिल, सो गया साथ मेरे मुझको सुलाता हुआ घर, थक गया क्या मेरे तूलानी सफर से आदिल, सो गया साथ मेरे मुझको सुलाता हुआ घर, ख्वाब के खदशे से अब नींद उड़ी जाती है, मैंने देखा है उसे छोड़ के जाता हुआ घर।
बहुत खूब, क्या खूब कलाम है। कराची में भी और जहां जहां इंटरनेट के जरिए हमें आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कराची के उन तमाम शायरों का, म्यूजिक जिन्होंने हमें सुनाया उनका, वसतुल्लाह साहब आपका। आखिरी में दोस्तों आप सब से विदा लेते वक्त मैं एक शेर मीर तकी मीर का, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शायर एक मंच पर 16 तारीख को थे और हमारे तमाम लोगों ने जिन्होंने फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देखा और जो नहीं देख पाए थे उनके लिए हम इस कार्यक्रम के संपादित अंश आपको सुनवा रहे थे। कार्यक्रम में आपको बता दें इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। ये हादसा शाम 5:50 पर हुआ। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनिल सक्सेना ने बीबीसी को बताया कि ट्रेन के 5 कोच पटरी से उतरे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया है और कहा है कि हालात पर मेरी नज़र बनी हुई है, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है, उनसे कहा है कि राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जाए। रूस के सुरगुत शहर में कम से कम 7 लोग चाकू से किए गए हमले में जख्मी हो गए हैं। शुरुआती खबर के मुताबिक हमलावर की पुलिस की गोली से मौत हो गई है। जांचकर्ताओं का कहना है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने हमलावर की पहचान कर ली है। कैटलोनिया में हुए 2 हमलों में 14 लोगों की मौत के बाद स्पेन की सरकार का कहना है कि पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ भरे इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी, मगर आंतरिक मामलों के मंत्री जुआन इग्नेकियो ज़ोइदो ने कहा कि देश में आतंकवाद के खतरे का आकलन अधिकतम नहीं किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज कार्यक्रम के लिए स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ उसकी ताज़े तस्वीर देखने के लिए bbchindi.com पर आप आ सकते हैं। वहाँ क्या चल रहा है पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।